ओम शांति। हर एक फील्ड में अगर हम देखते हैं, अगर आज के मनुष्यों को भी देखते हैं, हर एक की जाति धर्म जो भी कुछ होता है, सबकी अपनी अपनी मर्यादा होती है, समाज की अपनी मर्यादा होती है, और मर्यादा पर जो चलते हैं उनको हमेशा सभी सम्मान देते हैं। लौकिक रीति से हम देखते हैं कि जिसके कुल की जो मर्यादा होती है, उस मर्यादा का समझदार व्यक्ति हमेशा ही ध्यान रखता है। अगर कोई उसका ध्यान नहीं रखता है तो समाज उसको अपने कुल में से कहो, समाज में से कहो, बाहर कर देता है, उसको अकेला बना देता है, उसको किसी भी प्रकार का सहयोग या स्नेह किसी से प्राप्त नहीं होता है, वो अपने को अकेला फील करता है। जो जीना उसके लिए बहुत ही, जब कठिन समय आता है तो मुश्किल हो जाता है। हमारा ये ईश्वरीय परिवार दैवी परिवार है। ईश्वरीय परिवार ये सर्वोत्तम परिवार है, क्योंकि इसका रचयिता स्वयं ईश्वर भगवान। हमारे इस ईश्वरीय परिवार की भी मर्यादाएं हैं, और उन मर्यादाओं पर चल के हम भविष्य में मर्यादा पुरुषोत्तम गाए जाते हैं। यहां पर मर्यादाओं को धारण करते हैं तभी देवी देवताओं का गायन मर्यादा पुरुषोत्तम होता है। अगर ईश्वरीय मर्यादाओं का, क्योंकि हमारी डबल मर्यादा है, ईश्वरीय मर्यादा भी है और दैवी मर्यादा भी है, अगर इन मर्यादाओं का कोई भी ब्राह्मण उल्लंघन करता है तो उनको कोई कुल में से निकालते नहीं है, परंतु जो उल्लंघन करता है वो स्वतः इस कुल से निकल जाता है। माया देखती है कि इस कुल से ये निकल गया तो उसकी खातिरी करती है। मर्यादा ये जीवन की शोभा होती है। मर्यादाओं पर चलने से चरित्र निर्माण होता है। अगर कोई भी मर्यादाओं का उल्लंघन करता है तो उसकी बहुत बड़ी सजा भोगनी पड़ती है। जैसा यादगार रामायण में आप देखेंगे, सीता ने मर्यादा का उल्लंघन किया लक्ष्मण रेखा का, तो उसको कहां पर जाना पड़ा, शोक वाटिका में जाके बैठी है। हम लोगों की यादगार, अगर हम मनसा से भी ईश्वरीय मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो बाबा के द्वारा मिलने वाला जो वर्षा है, प्रत्यक्ष फल और भविष्य फल, इससे वंचित हो जाते हैं और धर्मराज के डंडे खाने पड़ते। तो इस ईश्वरीय कुल की क्या मर्यादाएं हैं, बाबा ने हम बच्चों को सब मर्यादाएं खींच के दिया है। सवेरे अमृत वेले से उठने से लेकर रात सोने तक मर्यादाएं बाबा ने हम बच्चों को बताई हुई है। उन मर्यादाओं पर चलना हमारा फर्ज बनता है। हम सब ब्रह्मा कुमार और कुमारियां जो भी हैं, ये ब्रह्मचारी सिर्फ नहीं परंतु ब्रह्माचारी है। सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही ब्रह्मा कुमार या कुमारी नहीं बन सकते हैं, परंतु ब्रह्मा बाप का आचरण करने की आवश्यकता, अर्थात ही ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। जितना जितना हम ब्रह्मा बाप का आचरण करते हैं, जितना जितना फॉलो करते हैं, उतना उतना हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनते जाते हैं। बाबा ने हम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में आते हुए सबके साथ कौन सी मर्यादाओं पर ध्यान देना है ये हम बच्चों को बताया हो। पहले पहले हम देखते हैं कि हमारी मनसा की मर्यादा क्या है, ईश्वरीय मर्यादा, क्योंकि हमारे सारे संबंध एक ही बाबा के साथ है। ब्राह्मण कुल ये सर्वश्रेष्ठ कुल है जो खास बाबा संगम युग पर आके स्थापन करता है, जिसको ब्राह्मण कुल भूषण कहा जाता है। भूषण अर्थात आभूषण, गहने, जैसे गहने पहनने से शोभा होती है, वैसे ही हम जो ब्राह्मण हैं, हम सर्व कुलों के आभूषण हैं, सर्व कुलों को सुशोभित करने वाले। इसीलिए हमारी मर्यादाएं ये सबसे ऊंची मर्यादाएं हैं। तो सबसे पहली मर्यादा हम देख रहे थे कि मनसा की मर्यादा बाबा ने हम बच्चों को कौन सी खींच के दिया है। बाबा ने हम बच्चों को लकीर खींच के दिया मन मना भव की। सदैव मन मेरे से लगा के रखो, किसी भी देहधारी को याद मत करो, पहले दिन से लेके लास्ट दिन तक। बाबा हम बच्चों को यही तारणा देते, यही समझाने देते, हमारे सारे ज्ञान का सार ये है, मन मना भव मध्याची भव। मन का भटकना बाबा का बनने के बाद बंद हो गया। जितना जितना मन को बाबा के साथ लगाते जाते हैं, वो सर्वशक्तिवान होने के कारण उसके द्वारा हमें सर्वशक्तियां प्राप्त होती है, उसके द्वारा सर्व गुण प्राप्त होते हैं। सर्व ईश्वरीय प्राप्तियों का आधार मन और बुद्धि। अगर किसी भी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो वो अपनी प्राप्तियां सप्लाई करना बंद कर देता। तुरंत आपको खुद को अनुभव होगा, अगर मनसा से भी कोई बात का उल्लंघन करते ईश्वरीय मर्यादा का, तुरंत स्थिति के ऊपर असर होता है, सुख और शांति गायब हो जाती, विवेक फटका मारना चालू कर देता। तो हमारी मनसा की जो मर्यादा है वो है सदैव शुभ सोचना, स्वचिंतन, परमात्म चिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक। जब तक हम स्वचिंतन नहीं करते हैं तब तक परमात्म चिंतन भी नहीं कर सकते हैं। जितना जितना हम स्वचिंतन में रहते हैं, स्वचिंतन से परचिंतन स्वतः ही बंद हो जाता है। स्वचिंतन करने के लिए बाबा ने हमें स्वदर्शन चक्र दिया हुआ। आप कहेंगे स्वदर्शन चक्र माना, कोई कोई कहते हैं उनको कहेंगे स्वदर्शन चक्र घुमाओ तो कहेंगे सतयुग में 8 जन्म लेते, त्रेता में 12, ये स्वदर्शन चक्र नहीं। स्व का दर्शन करना बाबा ने पहले दिन ही हम बच्चों को बताया है कि तुम आत्मा है, ये पहला लेसन हो गया। परंतु अभी हम लोग मैं आत्मा हूं तो मैं आत्मा कौन सी कैटेगरी की हूं, मुझे आत्मा में क्या क्वालिफिकेशन है, मुझ आत्मा में क्या डिफेक्ट है, ये सब देखने की आवश्यकता है। मेरे अंदर कौन सी कमियां हैं जो मुझे फ्लोलेस हीरा बनना है। वैसा बाबा आके हम बच्चों को हीरा बनाते हैं सच्चा। दूसरे जो जड़ हीरे होते हैं उसमें जो दाग होते हैं वो कभी निकल नहीं सकते हैं, परंतु हम जो चेतन हीरे हैं आत्मा रूपी हीरे से बाबा सर्व दाग ज्ञान और योग से निकालता है। तो इसीलिए सदैव बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि बच्चे तुम्हें कभी भी व्यर्थ चिंतन नहीं करना है, तुम्हें कभी परचिंतन नहीं करना है, तुम्हें कभी विकल्प नहीं उठाने। वास्तव में देखा जाए तो जब शुरू शुरू में बाबा की प्रवेशता हुई उस समय बाबा बच्चों को कहते थे अगर मन में कुछ चलेगा तो हर्जा नहीं है, वाणी और कर्म से कोई विकर्म नहीं करना। परंतु पहले दिन से मम्मा इस बात की तरफ अटेंशन खिंचवाती थी कि आप अभी छोटे हैं इसीलिए बाबा आपको छूट देता है, पर आगे चल के आप लोग देखना बाबा इसके ऊपर आपको सावधानी देगा। और अभी है ऐसा ही, अभी बाबा ऐसा नहीं कहता व्यर्थ चिंतन चलेगे तो चले या विकल्प आएगे तो चलेगा नहीं। मम्मा ने पहले दिन से उसके ऊपर ध्यान दिया, इसीलिए मम्मा इतनी छोटी आयु में कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर ली, क्योंकि उसका संकल्पों के ऊपर पूरा जापता था। और हमें ये मालूम है कि जीवन के परिवर्तन का आधार ही संकल्प, जैसी स्मृति रहती है स्मृति के आधार पर समृद्धि आती है, शक्ति आती है, और जिस शक्ति के द्वारा हम अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं ऊंची आत्मा हूँ, इसका पाठ हम बच्चों को पक्का कराया शुरू शुरू में। देह का अभिमान अलग बात है और देह भान अलग बात है। देह का अभिमान मैं फलानी हूं, मैं फलाना हूं, मैं सेठ हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये हूं, वो रिश्ते नाते, ये देह अभिमान हो गया। परंतु देह का भान स्त्री या पुरुष का, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये देह का भान हमारे ऊपर इतना फिट हुआ हुआ है, बाबा ने आके इसके लिए अभ्यास कराया कि अपने को स्त्री या पुरुष समझने के बजाय मैं शिव शक्ति हूं। शिव शक्ति में दोनों भी आ जाते, मेल भी आ जाते, फीमेल भी आ जाते। तो जब हम अपने को शिव शक्ति समझेंगे, बाबा ने खास ये प्रैक्टिस कराई, शिव शक्ति समझने से माताओं के अंदर जो डर की भावना होती है वो निकल जाती है, वीकनेस निकल जाता है, भाइयों में जो रोग होता है वो स्वतः छूट जाता है। बाबा ने दूसरा अभ्यास कराया, मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, उसमें दोनों भी आ गए, मेल और फीमेल। तो जितना जितना ये हम अभ्यास करते हैं उसके आधार से देह का भान भूलता जाता है, देह से डिटैच होते जाते हैं। और देह से डिटैच होने के बाद देह का भान ही भूल जाएगा तो देह का अभिमान आने की बात ही नहीं होगी। और बाबा को याद करने की विधि ये है, देह भान को भूल करके और पीछे उसकी याद में रहना। इसीलिए पहले स्वदर्शन, स्वचिंतन, परमात्म चिंतन, जिस परमात्म चिंतन से हमारे विकर्म विनाश होते हैं, जिस परमात्म चिंतन से हमें सर्व शक्तियां मिलती है, जिस परमात्म चिंतन से हम पतित से पावन बनते हैं। तो इसीलिए हमारा एक संकल्प भी वेस्ट नहीं जावे, बाबा कहता है बच्चे तुम निरंतर मुझे याद करो। निरंतर क्यों कहता है? तुम्हारे याद में कभी भी अंतर नहीं पड़ना चाहिए। वो इसीलिए बाबा कहते हैं क्योंकि श्वास के ऊपर कोई भरोसा नहीं। कोई भी समय हमारा अंतिम श्वास हो सकता है, और अगर हमारे को आदत है भूलने की बाबा को, और उस समय जब हमारा अंतिम श्वास होवे उस समय अगर हम बाबा को भूल जावे तो हमारी गति क्या हो। इसीलिए बाबा कहते कि निरंतर तुम मेरी याद में रहो। तो निरंतर बाबा को याद करने के लिए आत्माभिमानी बनने की बहुत आवश्यकता। हमें अब वापस घर जाना है, इसीलिए हमारी निरंतर याद बनी रहे, बाबा कभी भी भूले नहीं, इस बात का हमें अटेंशन रखने के लिए बाबा ने सिखाया। ये हमारी मर्यादा है। उसके बाद अभी हम देखते हैं कि निरंतर बाबा की याद रहे, सदैव शुद्ध संकल्प चलते रहे, श्रेष्ठ संकल्प चलते रहे, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए बहुत बड़ा ज्ञान का खजाना चाहिए। सिर्फ सारा दिन शिव बाबा नहीं कर सकते। अगर हमारे पास ज्ञान का खजाना है, अगर हमारे पास ज्ञान धन है जो बाबा ने दिया हुआ है, तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तुम क्या करते हैं रोज। बाबा तुम बच्चों को कितना अथाह ज्ञान देता है आप देखेंगे। बाबा की एक एक मुरली रत्नों की खान है। अगर आप आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के और ये बुद्धि में रखे कि बाबा मेरे को पढ़ाने को आया, बाबा मुझे पढ़ा रहा है, ये बात बुद्धि में रख के अगर आप मुरली सुनेंगे ना, तो आपको उससे बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। वो आपके अंदर जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं बाहर निकले तो भूल गए, ये बात नहीं है। बाबा कहते थे देखो जानवरों में भी अक्ल है। गाय एक घंटा घास खाती है, सारा दिन मुंह हिलाती रहती। तो तुम बच्चे जो ज्ञान सुनते हो, ज्ञान घास है ये भी, तुम बच्चे जो ज्ञान सुनते हो सारा दिन उसको क्या करो, उगारते रहो, विचार सागर मंथन करते रहो। तो इसीलिए स्वचिंतन के लिए, शुद्ध चिंतन के लिए ज्ञान मंथन की आवश्यकता। तो जितना जितना हम मंथन करते हैं, क्योंकि ये स्टेजेस है अध्ययन, उसके बाद है फिर अध्ययन करने के बाद मनन चिंतन, और औरों को सुनाने का भी काम करते हैं। जितना जितना मनन और चिंतन करते हैं उतना उतना हम उस स्थिति में मगन हो जाते। कहा जाता है ना सिमर सिमर सुख पाओ। तो जितना जितना ज्ञान दाता और ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं उतना उतना हमें सुख की अनुभूति होती है। तो बाबा ने ये मर्यादा हमको खींच के दिया है कि तुमको अपनी बुद्धि को कहां भी लेके नहीं जाना है, तुमको सदैव अपनी बुद्धि को एक बाबा के साथ लगाना है, मनन चिंतन में रहना है, शुभ चिंतक बन के सबका चलना है, सबका कल्याण हो, सर्व का भला हो। सदैव यही सोचते रहो कि हम औरों का कल्याण कैसा करें। जानकी दादी इतनी बड़ी आयु में भी चक्कर लगाती थी, जरूर लास्ट तक, लास्ट बरस में तो बहुत चक्कर लगाए उसने सिंड्रोम। मैं कहती दादी इतना आप क्यों भाग रहे? दादी ने कहा देखो मेरे को जो मिला है वो सबको मुझे देना है। तो जितना जितना हम ऊंची स्टेज पर जाते हैं तो दातापन की भावना ये जागृत होती है कि हमारे को जो इतना सुख मिला है वो हम अपने भाई बहनों को देवे, उनको उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। तो हमारे मनसा की ये मर्यादा है बाबा ने खींच के दिया हुआ है कि तुम्हें अपनी मनसा में कभी भी व्यर्थ चिंतन नहीं करना है, व्यर्थ संकल्प नहीं करने, अपनी शक्ति को नष्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो हमारी ताकत सारी नष्ट हो जाती। एक तरफ देखो पानी की टाकी ऊपर से भर रही है और नीचे अगर थोड़ा सा भी उसको छेद होगा तो क्या होगा, वो टाकी सारी खाली हो जाएगी। तो व्यर्थ चिंतन ऐसा है जैसा छेद बुद्धि में, तो उससे क्या होता है, सारी शक्ति नष्ट हो जाती। इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम स्वचिंतन में रहो, प्रभु चिंतन में रहो, मनन चिंतन में रहो, इस मर्यादा के अंदर रहो, व्यर्थ चिंतन चलेगा, माया को आने का दरवाजा ही वो है। आप दरवाजा खोल के बैठे हैं चोर के लिए और फिर कहते चोर आ गया, अरे दरवाजा तो बंद करो, तुम्हारा मन सक उसको क्यों खोल के रखा है तुम। उसके बाद हम देखते हैं बाबा ने हमें वाणी की क्या मर्यादा दी। बाबा ने हम बच्चों को वाणी के लिए मर्यादा खींच के दिया है कि बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और जो बोलते हो सोच के बोलो। ज्ञानी और अज्ञानी में ये बहुत बड़ा अंतर है। वो जो भी बोलते अज्ञानी आज पीछे कहेगा हमारे को बोलना नहीं था पर हमारे मुंह से निकल, मुंह मेरा निकलेगा कैसे। इसीलिए बाबा कहता है कि सोच करके बोलो और जो बोलना है वो कम बोलो। हम लोग क्या समझते हैं, सामने वाला कम समझ रहा है इसलिए हम ज्यादा बोलते, समझाने की कोशिश करते हम उसको, परंतु बाबा कहता है ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। जैसे मनसा की शक्ति लीक होती है व्यर्थ संकल्प चलने से, वैसे ही वाणी के द्वारा डबल शक्ति लीक होती है, व्यर्थ बोलने से, फालतू बोलने से शरीर की ताकत भी नष्ट होती है, आत्मा की ताकत भी नष्ट होती है। आप फालतू बड़बड़ करते रहो, देखो कितनी थकावट आती है, मन भी थक जाएगा, तन भी थक जाएगा, मुख भी थक जाएगा। इसीलिए हमारे को देखो ऋषि मुनि जो है वो कितना कितना वर्षों तक मौन रखते थे, मौन रखने के बाद उनके वाणी में वो ताकत आ जाती थी, जो बोलते थे वो सच होता था। इसीलिए सतवचन महाराज कहते हैं। तो जो बोलना है आप सत बोलो परंतु कम बोलो, ज्यादा नहीं बोलो। कोई कोई हमारे भाई बहन होते हैं बोलते हैं, हम बहन जी ज्यादा नहीं बोलते, हम बहुत कम बोलते हैं और कभी कभी बोलते हैं, पर ऐसा बोलते हैं सामने वाला जन्म भर रोता रहे। इसीलिए बाबा ने कहा मीठा बोलो, बोल आप बोलो का संधि विच्छेद करो, बो प्लस लो, बोलो माना क्या है, बीज बोलो। जैसा बीज बोया जाता है, अगर आप मीठा बीज बोएंगे तो उससे फल मीठे मिलेंगे, आप कड़वा बीज बोएंगे तो उससे फल जो है वो कड़वे बोएंगे। तो हमेशा बीज बोने के समय क्या देखा जाता है, कौन सा बीज बोवे, अच्छा बोवे या खराब बोवे। तो ये बोल वो चीज है, हम जैसा बोलते हैं उसका कई गुना होके मेरे पास वापस आता। तो इसीलिए हमेशा कम बोलो, सत्य बोलो। कोई कोई कहते हैं सत्य कड़वा होता है, सत्य कड़वा नहीं। बाबा ने बताया ना, आजकल देखो साइंस कितनी इंप्रूवमेंट हो गई है, कितनी कड़वी कड़वी दवाइयां हैं उसके ऊपर कवर करके कैप्सूल बना बना के दे रहे हैं। तो क्या साइलेंस में वो ताकत नहीं है कि किसी को भी सत्यता का सत्यता सुनाने के लिए आप उनको युक्ति से बताओ। आप कोई समझो हो, कोई काना है, किसी को एक ही आंख है, आप उसको सीधा काना बोलेगे तो आपसे झगड़ा करेगा वो। पर आप अगर उसको बोलो भाई तुम्हारी आंख जो है वो शायद कुछ तकलीफ है आपको आंख में, बोला बहन जी हम तो जन्म से मेरे को एक ही आंख है, तुरंत मान लेगा। बाबा बोलता था, साकार बाबा, बाबा बोलता था बच्चे जूता मारो पर मखमल का जूता मारो, मखमल का जूता जरा नरम लगता है ना मतलब जो बोलना हो वे सॉफ्ट बोलो, ऐसा कड़क नहीं बोलो, तीखा नहीं बोलो जो सामने वाला बेचारा रोता नहीं। तो बाबा ने ये मर्यादा खींच के दिया ना हमारे को कि कम बोलना है तुमको। कहेंगे कम बोलेंगे तो समझ में नहीं, कम बोलने में बहुत ताकत है, कम बोलेंगे तो हमारे पास शक्ति जमा होती है। आप देखो जो मनोचिकित्सक होते हैं वो कितनी पढ़ाई पढ़ते हैं, जो नहीं मनोरोगी दवाइयां करने वाले हैं वो कितनी पढ़ाई पढ़ते हैं, कितना खर्चा करते हैं, डिग्री प्राप्त करते हैं, और जो ऐसे पेशेंट होते हैं उनके पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं तेरे मन में जो भी होवे जैसा भी होवे तू सारा बताओ, सारा उस सारा सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं, वो सब बोलता है और वो फिर क्या करते हैं, दो शब्द बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते, कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे, दो ही शब्द बोलेंगे, थोड़ा ही बोलेंगे तुम ऐसा करना, ये करना, ये करना, ये परहेज रखना, ये करना, उस पर देखो कितना पैसा कमा रहे हैं, बोलते कुछ नहीं है, वो ज्यादा नहीं बोलेंगे, वो सुनते ज्यादा है। तो हमारे को भी थोड़ी सुनने की आदत डालनी चाहिए अपने को, थोड़ा ज्यादा सुनो, ज्यादा बोलो नहीं, परंतु बाबा कहते हैं बाबा बच्चे ज्यादा सुनो भी नहीं, जो अब तुम्हारे काम का हो वो सुनो, जो काम का नहीं हो नहीं सुनो, ऐसा करते चलो। तो इसीलिए ये जो हमारी वाणी की मर्यादा है, ये जो वाणी है कहा जाता है, ये वाणी खट पर भी बिठाती है, पट पर भी बिठाती है, ये हमारे को सम्मान भी दिलाती है और गिराती भी है। इसीलिए अपनी वाणी के ऊपर हमें बहुत बहुत ध्यान देने की आवश्यकता, ये मर्यादा बाबा ने हम बच्चों को वाणी के ऊपर केंद्र की दी। अच्छा, अभी कर्म की बात लेते हैं, हमारे कर्मों की क्या मर्यादा है। कर्मों की जो हमारी मर्यादा है वो सुख दो और सुख लो। आप जो भी कर्म करते हैं उससे सामने वाले को हमेशा सुख मिले, जैसा वाणी से सुख मिले। हमारी मनसा वाचा और कर्मणा तीनों समान होने चाहिए, उसको ज्ञानी तू आत्मा कहते। ऐसा नहीं हम सोचे बहुत, बोले बोले भी बहुत और करे कुछ नहीं। एक बारी एक माता बैठी थी, ऐसा ही बैठी थी क्लास में, मैंने कहा पता नहीं ये क्या सोच रही, मैं उससे पूछा, मैं बोला बहन अब क्या सोच रहे हैं, बोला मैं शिव को मक्खन लगा रही थी, मैं मेरे को मक्खन तो दिखाई नहीं पड़ा, मैं बोला कहाँ है मक्खन, बोला आप मैंने सवा मन मक्खन लगाया शिव को, मैंने कहा कैसा लगाया, बोला मनसा से, समझा, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं। तो ऐसा मनसा में बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वाणी और कर्म गए काम से। बाबा कहते हैं नहीं, तीनों को भी समान करो। तो हमारे जो कर्म है, कर्म की जो हमारी मर्यादा है वो क्या है, जो हमारे से बड़े हैं उनका रिगार्ड रखो, जो साथ वाले हैं उनको रिस्पेक्ट दो, और जो छोटे हैं उनको प्यार दो। बाबा ने प्रैक्टिकल में करके बताया, छोटों को बाबा ने देखो इतना प्यार दिया, ऐसी पालना दी जो विश्व कल्याण के लिए निमित्त बन गए। ये हमारी दादियां कितनी छोटी छोटी थी, जब ये अपनी भट्टी बनी तभी क्या थी, परंतु बाबा ने उनको इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, और उनको छोटे को छोटा नहीं समझा, उनको बड़ा महान समझा, क्योंकि बाबा हमारी अपूर्ण स्टेज नहीं देखता है, संपूर्ण स्टेज देखता है। हम जो बनने वाले हैं वो स्टेज बाबा देखता है, हम अभी की स्थिति को देख करके फिर किसी को कुछ भी बोल देते, बाबा नहीं देखता। इसीलिए देखो रोज बाबा हम बच्चों को हमारी कितनी महिमा करता है। बाबा कहता है मेरे सारे राजे बच्चे हैं, यहाँ कोई ठिकाना नहीं राजा बाजा का, परंतु बोलता है क्या, नहीं बोलता। बाबा की मुरली चालू होती है तो पहले पहले बाबा के माँ वाक्य क्या होते हैं, मीठे बच्चे, बाबा को मालूम नहीं कितने मीठे हैं, क्यों बोलता है, मीठा बनाने के लिए बोलता है। बाबा के माँ वाक्य कितने अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे जो कर्म है वो कर्म ऐसे होने चाहिए जो सामने वाले हमें देख करके फॉलो करे, क्योंकि जो भी ब्राह्मण है हर एक ब्राह्मण के पीछे बहुत लंबी क्यों है। आप ऐसा नहीं समझना हमको कौन देख रहा है, सबसे बड़ी बात तो इस ड्रामा का डायरेक्टर हमको देख रहा है, स्वयं भगवान, सारा ब्राह्मण परिवार हमको देख रहा है, लौकिक वाले भी हमको देख रहे हैं, कि ये कहां तक पहुंचे हुए हैं। अलौकिक वाले भी देखते, लौकिक वाले भी देखते। आप जितने जितने पुराने होते जाते हैं उतनी उतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती। वो यही देखते हैं कि ये कहते हैं हमको भगवान पढ़ाता है इनके जीवन में क्या परिवर्तन। मनसा के द्वारा हम योग का दान देते हैं, वाणी के दान द्वारा हम ज्ञान दान देते हैं, परंतु कर्मों के द्वारा हम गुणों का दान देते हैं। गुणों का दान वाणी के द्वारा नहीं दिया जाता, मनसा के द्वारा नहीं दिया जाता। आपको गुणों को प्रैक्टिकल में जीवन में धारण करके औरों के सामने आना पड़ेगा, उदाहरण बनना पड़ेगा। जो उदाहरण मूरत बनते हैं वही विश्व का उद्धार कर सकते। आज हम दूसरे को बोलेंगे गुस्सा नहीं करो और खुद गुस्सा करेंगे तो सामने वाला क्या सीखेगा। झूठ नहीं बोलो, हम झूठ बोले तो। इसीलिए कर्मों की सेवा ये सबसे बड़ी सेवा है। बाबा कहता है कि बच्चे तुम्हारे कर्म ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। तो कर्मों की लकीर बाबा ने खींच के हम बच्चों को दी हुई है, मर्यादा खींच के दी है कि हमें हमेशा ऐसे कर्म करने हैं जो औरों के लिए आदर्श बन सके, औरों को उससे कुछ न कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। आपसे कोई भी मिले तो उसको प्राप्ति होनी चाहिए। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जब वो किसी के पास भी जाते हैं, किसी को भी मिलते हैं, उनको बड़ी खुशी होती है कि वाह ये फलाना मेरे को मिला। और कोई वो लोग होते हैं जो उनसे चले जाते हैं तभी उनको खुशी होती है, अच्छा हो गया गया। तो हमको देखना चाहिए हमारे मिलने से लोगों को खुशी होती है या हमारे जाने से लोगों को खुशी होती है। तो अगर हमारे कर्म इतने श्रेष्ठ हैं, ऊंचे हैं, बाबा कहते हैं तुमको कोई भी मिले, तुम दाता के बच्चे हो, तुम उनको कुछ ना कुछ जरूर दो। किसी को सुख दो, किसी को शांति दो, किसी को आनंद दो, किसी को खुशी दो, किसी को शांति दो, कुछ ना कुछ दो उनको, क्योंकि आपको बाबा ने बहुत बड़ा खजाना दिया हुआ। तो उनको ऐसा लगना चाहिए हम इनके साथ मिले, इनसे मिले तो हमारे को खुशी मिली, इनसे मिले तो हमको आनंद मिला, क्योंकि बाबा ने हमें इसकी अनुभूतियां कराई। तो कर्मों की सेवा ये बहुत बड़ी सेवा है। बाबा कहते हैं तुम्हारे कर्मों के द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होने वाले, तुम्हारी सीरत के द्वारा बाप की सूरत दिखाई पड़नी चाहिए। सीरत माना कर्म। बाप को कैसा प्रत्यक्ष करेंगे तुम? ये जो कहावत है भक्ति मार्ग में, जिधर देखूं तू ही तू, ये क्या है? आगे चल के बच्चों की ऐसी अवस्था होगी जो बाप समान हो गए तो जिधर देखेंगे उनको बाप दिखाई पड़ेगा, अर्थात बाप की प्रत्यक्षता हो। इसीलिए हमारे को बहुत अपने कर्मों की तरफ ध्यान देना है। और ऐसा नहीं समझना कोई सुनता थोड़े ही हम आपस में कैसा भी बर्ताव कर, किसको मालूम थोड़ा ही है हमने आपस में झगड़ा कर लिया, किसी ने देखा थोड़े, घर में रहते हैं किसको मालूम भी नहीं पड़ता है, दरवाजा तो बंद है हमारा, हमने झगड़ा तो भी किया। अरे तुमने भले झगड़ा, तुम घर में नहीं रहते हो, तुम विश्व की स्टेज के ऊपर रहती हो। हम बेहद के एक्टर हैं और सबका ध्यान किसकी तरफ होता है। स्टेज के ऊपर कोई झाड़ू भी लगाएगा ना तो भी देखेंगे ठीक लगा रहे हैं, नीचे उतर के कोई राजा का पार्ट भी प्ले करेगा तो भी नहीं देखेंगे। तो हम तो कितनी बड़ी स्टेज के ऊपर है, विश्व की स्टेज के ऊपर है, तो हमें सब देख रहे हैं, ये ध्यान हमको जरूर रखना। तो हमारे कर्मों में क्या आ जावे, श्रेष्ठता आ जावे, हमारे कर्मों में ऊंचाई आ जावे। कर्म भ्रष्टि तो बने, हम अभी धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ बन रहे हैं ना, श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हमारे अंदर बहुत श्रेष्ठता होनी चाहिए। वो सत्यता होनी चाहिए, उसके बिगड़ नहीं हम स्थापन कर सकते। इसीलिए आपस में जब भी मिलते हैं, देखो बाबा ने कितनी अच्छी मर्यादा बताई, तुम आपस में जब भी मिलते हैं तो कौन सी स्थिति में मिलो, ज्ञानी होवे चाहे अज्ञानी होवे, हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं, एक ही घर के रहने वाले हैं, उसी स्नेह से उसी प्यार से मिलो, उनकी विशेषताओं को देखो। हर एक आत्मा में ज्ञानी अज्ञानी सब में विशेषताएं हैं। वो दत्तात्रेय ने तो जड़ कुत्ते से और झाड़ से भी गुण उठाया, ये तो चेतन व्यक्ति है ना। तो हरेक की विशेषता देखने की बाबा ने हम बच्चों को आंख दी हुई, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, सर्वगुण संपन्न बनना। तो सर्वगुण संपन्न तभी बन सकेंगे जब सब में से गुण उठाएंगे, तभी सर्वगुण संपन्न बन सके। हमारा लक्ष्य ये तो नहीं सर्वगुण संपन्न बनना, तो किसी के भी अवगुण चित्त पर नहीं धरना, किसी के भी अवगुण नहीं देखना, ये हमारी मर्यादा है। अगर हम अवगुण देखते हैं मर्यादा टूटती है, मर्यादा टूटती उसकी सजा क्या मिलती है, हमारे अंदर नफरत पैदा होती। हम किसी का अवगुण देखेंगे तो नफरत आएगी ना, और किसी का गुण देखेंगे तो प्यार आएगा, देखो इसके अंदर कितना अच्छा गुण। और आप जैसा देखेंगे वैसा बन जाएगा, ये ध्यान में रखना। दूसरे की संभाल नहीं करो, खुद की तो संभाल करो कि मैं ऐसा नहीं बनना चाहिए, मैं अपने को सेफ रखूं। इसीलिए गुणग्राही दृष्टि रखो। अगर हमें हमेशा हर्षित मुख रहना है, क्योंकि रहना ही है हर्षित मुख, बाबा कहता है ना तुम्हारे चेहरे पर से बाप दिखाई पड़ना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर से वो खुशी दिखाई पड़नी चाहिए कि इनको क्या मिला है। ऐसा नहीं सदैव रोते ही रहो, किसी किसी का चेहरा ही ऐसा होता है, उसको पूछो तुम्हारा चेहरा ऐसा क्या करे, हमारी शक्ल ही ऐसी। अगर कोई जरा इतना छोटा सा चेहरा करते उदास करते थे ना, बाबा को अच्छा नहीं लगता था। साकार बाबा बोलता था ये उदासी ही जो है ये माया की दासी बनाने वाली, उदास क्यों होते हैं, खुश रहो, खुश रहो, औरों को खुशी बांटो। कौन मिला है तुमको, क्या मिला है तुम वो तो याद करो। तो सदैव हर्षित मुख रहने के लिए, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए हमको हर्षित मुख रहना है, तो हंसमुखी बनने की आवश्यकता। हंसमुखी क्या होता है, हंस में कौन सी विशेषता है, वो नीर क्षीर को अलग कर डालता है, मोती और कंकर को अलग कर डालता है। वो कंकर नहीं खाएगा, पत्थर नहीं खाएगा, मोती चुगेगा। तो वैसा ही गुण और अवगुण जो है, अवगुणों को आप साइड कर दो सामने वाले के और गुणों को देखो, तो जितना जितना हमारी गुण ग्राही दृष्टि होती जाती है उतना उतना हमारा चेहरा जो है उसके ऊपर प्रसन्नता आती जाती है। हम भी उनको देख के प्रसन्न होते हैं, वो हमें देख के प्रसन्न होते हैं। फिर ऐसा नहीं समझेंगे कि जल्दी जावे तो हम खुश हो जावे, ऐसा नहीं होगा। तो देखो बाबा ने कितनी मर्यादाएं बताई है। अभी हम ब्राह्मण हैं, हम सभी एक ही कुल के हैं, ये ध्यान में रखना। परंतु हम एक कुल के होते हुए आपस में हमारे को कभी भी किसी प्रकार की लेन देन नहीं करनी। जिसको जो भी करना है वो बाबा के साथ देने वाला वो है। कभी कभी ऐसा होता है आपस में आते हैं ना क्लास में, फिर उससे लोन ले लेंगे, उससे पैसा ले लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और फिर देखो तो ऐसा हो जाएगा ना, वो सामने वाला देगा उनको वापस, दोनों भी रफू चक्कर हो जाएंगे, बाप को ही छोड़ देंगे आके। इसीलिए बाबा कहता है ये स्थूल चीजों की, धन की कभी भी आपस में लेन देन नहीं कर। कहते ये हमारे भाई है ना, इसलिए हम इनको मदद करते हैं, परंतु उनको मदद करते करते खुद भगवान से मदद लेना भूल जाते हैं। बाबा ने हमें ये मर्यादा नहीं दी, हमारे नियमों में ऊपर लिखा हुआ है कि आपस में कभी एक दो से पैसे की लेन देन नहीं करना, क्योंकि ये भी माया है, एक बहुत बड़ी माया। किसी को नींद आती होवे तो दूसरा उठा देवे उसको, जरा आंखें खोल के बैठो ना, कोई कोई की आंखें बंद है, जरा सिर झुका हुआ है, क्या बात है? आप लोगों को बोर हो रहा क्या? जरा थोड़ा डिफिकल्ट तो है, इसलिए ऐसा होता होगा। इसलिए ये हमें ध्यान रखना है। अरे वो भिखारी लोगों को भी समझता है, भिखारी लोग जो होते हैं उनको भी अक्ल है। आज कार जब चौराहे पर खड़ी रहती है ना, सिग्नल पर कार खड़ी रहेगी, दो चार भिखारी भाग के आते हैं, अल्लाह के नाम से दे दो, अल्लाह के नाम से दे दो। वो समझते हैं ये हमको देंगे तो हम इनको रिटर्न नहीं कर सकते, इसीलिए बोलते हैं अल्लाह के नाम से दे दो। अल्लाह बांधा हुआ है, देंगे उनको, ले गएगी और अल्लाह देगा रिटर्न। हमको दो कभी नहीं बोलेगी, अल्लाह के नाम से दो। हमारा सारा जीवन ही अल्लाह के नाम से है, बात ही नहीं है कोई, तो हम कैसा किसी से लेन देन कर सकते? क्यों करें हम, क्यों बोझा उठावे? अरे भाई 63 जन्मों का बोझा उतारते उतारते नाक में दम आ रहा, अभी और नया हिसाब किताब काय को जोड़े हम? कोई कोई यहाँ नाते रिश्ते जोड़ना चालू कर दे। एक दिन क्या हुआ, एक माता ने कहा, बहन जी मेरी बेटी आई है, जरा देखो। तो मैं बोला बेटी को क्या देखना, कैसी लगती है मेरी बेटी? मैं बोला बेटी तो बेटी लगती है, क्या लगेगी? तो सच धज के आई बेटी। हमने कहा भाई क्या दिवाली विवाली है, क्या है जो इतने सज धज के आए? बोला नहीं, ये बलानी माता है ना, इसके लड़के के साथ जरा सगाई करानी, इसलिए बताने को आई। हम बोला वाह वाह, ये अच्छा है तुम्हारा सौदा, यहाँ यहाँ का यहाँ। फिर आपको तो मालूम है, जब सगाइयां हो जाती, शादियां हो जाती, फिर लड़ाई झगड़े होते, और कुछ नहीं होते। फिर तू भी गया और मैं भी गया, दोनों भी चल जाते, ज्ञान से छूट जाते। तो ये नाते रिश्ते एकदम झूठे नाते रिश्ते, इनमें कभी भी जाना नहीं, कभी भी किसी से ना रोटी और ना बेटी किसी की भी लेन देन नहीं करना, परहेज करना इस बात की। देखो कोरोना ने कैसी जादू किया, सबके मुंह ही बांध डाले, टोपी पहनी है यहाँ तक, इधर से मुंह बांधा हुआ है, आंखें बंद है या खुली है मालूम नहीं पड़ेगा। आपको एक हंसी की बात सुना, एक माता अपने छोटे बच्चे को लेके आई क्लास में, छोटा बच्चा था उसका, बहुत रोता था बहुत रोता था, तंग हो गई उससे, उसके रोने से तंग हो गई, उसको लेके आई। बोला जाते उधर, बोलते शांति मिलती शांति मिलती, देखती तो क्या हुआ, योग चल रहा था, योग चल रहा तो सचमुच उसका बच्चा सो गया। वो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश नहीं थी, इतनी खुश हो गई, बोला क्या आपके योग में ताकत है, ये घर में इतना सारा समय रोता है और यहाँ आ गया ये सो गया, बहुत ताकत है आपके इसमें, कितनी शांति है। तो टीचर बहन ने कहा ये छोटा बच्चा क्या सो गया, हमारे पास तो अच्छे अच्छे सो जाते, बोला छोटा क्या सो गया। ताली बजा रहे आप लोग, आपके मनपसंद बात आई। अभी चार प्रकार की मर्यादाएं आपको बता दिया, मनसा वाचा कर्मणा संबंध और संपर्क। अगर इसमें रहेंगे तो फिर क्या होगा, फिर कभी भी माया का वार नहीं होगा और माया से कभी भी हार नहीं होगी, सदैव विजयी बनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। सभी एक बार खड़े हो जाओ दीदी के सम्मान में, थोड़ा अच्छा तालियां बजाओ जोर से, ताकि नींद भी दूर हो जाए आपकी।
ये समझता है अभी तक कोई सोया हुआ है, मैं सोने नहीं देती किसी को, तुम चिंता नहीं करो।
थैंक यू थैंक यू।
जाग रहे थे सभी।
सभी ने ध्यान से सुना, बोलो क्या क्या बताया दीदी ने?
अभी क्या परीक्षा ले रहे क्या आप इनकी? छोड़
प्रश्न तो लेना है, लेकिन कोई कोई दीदी बोले ना कोई ऐसा टेढ़ा मुंह करके बैठा है।
प्रश्न
तो दीदी ने देखो सभी को इतना भरपूर कर दिया। मीठा बोलो और सत्य बोलो। अच्छा, और मारना है तो क्या मारो? मखमल का। अच्छा चलो, तो एक प्रश्न आया है, कर्मयोगी जीवन का अनुभव सदा नहीं होता है। कर्मयोगी जीवन का अनुभव सदा नहीं होता, कर्म में ही बुद्धि फंस जाती है, विशेष कौन सा अभ्यास करे जो याद और सेवा का बैलेंस रख सके?
देखो बाबा ने हम बच्चों को बताया कि तुम्हें कर्म में योग नहीं करना है, योग में कर्म करने, दोनों में फर्क है। एक है कर्म में योग करना, दूसरा है योग में कर्म करना। आप सिर्फ उसका नंबर बदली कर डालो। मुझे योग में रह के कर्म करना है, योग में रह के भोजन खाना है, भोजन खाने में योग नहीं करना है। फिर क्या होता है, हम लोग जो पहला नंबर है उसको दूसरा नंबर दे देते हैं कि कर्म में रह के योग करना है। तो इसीलिए कर्म करते करते हम कर्म कॉन्शियस बन जाते हैं, कर्म चालू करने के समय बाबा को याद करते हैं, फिर कर्म कॉन्शियस बन जाते, कर्म को प्रधानता दे देते हैं। परंतु अगर हम सदैव ये याद रखेंगे कि हमको बाबा की याद में रह करके पीछे कर्म करना है, तो क्या होगा, हमारा ध्यान बाबा की याद की तरफ होगा, और कर्म जो है वो तो अगर याद हमारी यथार्थ है तो कर्म भी हमारा युक्ति युक्त ही होता है, वो एकदम ठीक होगा हमारा कर्म भी, और बाबा की याद बनी रहेगी। सिर्फ नंबर बदली कर डालो, ठीक हो जाएगा। समझ में आया?
थैंक यू दीदी। दूसरा प्रश्न है, गृहस्थ जीवन में कई भाई बहने अपने लौकिक अलौकिक जीवन का बैलेंस नहीं रख पाते, कुछ ज्यादा ही वैराग वृत्ति में चले जाते जो अपनी लौकिक जिम्मेवारियों को भी भूल जाते, उससे डिसर्विस हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए?
देखो बाबा ने तो हम बच्चों को बताया कि तुम्हें प्रवृत्ति में रह के निवृत्त रहना है। जो ऐसा जो पूरी जवाबदारियों को भूल जाते हैं और बैलेंस खो देते हैं, तो उससे फायदा तो कुछ नहीं होता है। ये अपनी मनमत पर करते हैं ना, बाबा ने तो ऐसा नहीं बोला है। बाबा ने कहा तुम कर्म करो, परंतु कर्म करते हुए उससे न्यारे रहो, जो तुम्हारी ड्यूटी है वो करो, संसार में रहो पर संसार तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। ये क्या सारा दिन संसार की बातें अंदर चलती रहेगी और ऊपर से बोलेंगे नहीं हमारा किसी से कनेक्शन नहीं है, फलाना नहीं है, टीरा नहीं। हमारे पास एक भाई आता था, वो कोई भी, देखो बाबा ने प्रवृत्ति वालों को जवाबदारियां दी हुई है कि तुम्हारी जो जो भी जवाबदारी है वो तुमको पूरी करनी। तो कोई शरीर भी छोड़ता था तो वो कभी भी जाता नहीं था किसी के पास, नहीं तो शरीर छोड़ते तो जाते हैं ना, उनको जाके मिलेगी उनके रिश्तेदारों को, ये करेंगे, कभी भी नहीं जाता था। तो हम बोले तुम क्यों नहीं जाता है? जाना चाहिए शादी में, अच्छा तुम नहीं गया तो बात अलग है, शरीर छोड़ते तो क्यों नहीं जाता है, रिश्तेदार भी शरीर छोड़ते तो नहीं जाते। नहीं नहीं, बाबा ने कहा ना कोई जरूरत नहीं है जाने की, बाबा ने कभी कहा नहीं, अपने मन मत लगाया। फिर क्या हुआ, उसकी माँ ने शरीर छोड़ा तो एक भी व्यक्ति नहीं आया, बोलो उठावे कौन, चार लोग तो चाहिए उठाने वाले। फिर तभी उसको अक्कल आई ठिकाने पर। तो ऐसे कोई कोई होते हैं दुनी, लगेगे तो अगर प्रवृत्ति की तरफ लगेगे तो पूरे फंस जाएंगे, अगर निवृत्त हो गए तो पूरे निवृत्त हो जाएंगे। परंतु बाबा ने कहा कि नहीं, तुम्हें बैलेंस रख करके चलना है, हमेशा ये ध्यान में रखना। आप लोग जो घर ग्रस्त में रहते हैं, आप उसको अपना घर नहीं समझो, उसको ऐसा समझो ये बाबा ने मुझे ड्यूटी दिया, ये आश्रम है, मेरे को इस आश्रम में रह गए और ये जो भी है ये सब बाबा के बच्चे हैं, इनको संभाल करके मेरे को साथ में लेकर के जाने का है, इन लोगों को भी लेके जाना है, इनका भी कल्याण करना है। आप कैसा कल्याण करेंगे, उनको छोड़ देंगे तो कल्याण कैसा करेगी। तो इसीलिए अपने कर्म ऐसे होने चाहिए जो वो लोग कभी भी नाराज नहीं होंगे। इसीलिए बाबा कहता है ना, किसी से भक्ति नहीं छुड़ाऊं, ये भी तो कर्म है ना, किसी से भक्ति छुड़ाना नहीं। अगर वो खुश होते हैं तो करो तुम जाके भक्ति, उसमें क्या, वो पाप थोड़ा ही है कुछ। तो बाबा तो हमेशा समझाता रहता है कि कैसा, चलो वो तो बताया हुआ है उसने कि कैसा प्रवृत्ति में भी रहो परंतु अंदर से निवृत्त होना चाहिए। अंदर से मेरा मेरा भूल जाओ तुम, ऐसा थोड़े सास को बहन थोड़े ही बोलेगे, सास को सास ही बोलेगे, परंतु उसके साथ तुम जो व्यवहार है, व्यवहार तुम्हारा सुधारो। व्यवहार नहीं सुधारेगे, सिर्फ बोलना चेंज कर डालेंगे, उससे और ही डिसर्विस होती है। पति को भाई बोलेगे क्या? पति तो पति है ना, उसको पति बोलो, पत्नी को पत्नी बोलो, परंतु बुद्धि में रखो कि हम एक बाप के बच्चे हैं। वो नहीं करेंगे, वो बुद्धि में नहीं रखेंगे, अपने कर्मों को वैसा चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ वाणी चेंज करके डिसर्विस करेंगे। ऐसे बहुत महान आत्माएं हैं।
आप ऐसी बात बताते हुए उनको एकदम खुशी हो जाती है कि बराबर वीक पॉइंट पकड़ लेते हो आप। दूसरा प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन में निरंतर उमंग उत्साह व खुशी रहे, बनी रहे, उसकी कुछ युक्तियां बताइए दीदी।
ऐसा है, बाबा ने जो हमारे को इतना अच्छा खजाना दिया हुआ है, उस खजाने को और कौन मिला है हमारे को, उसकी स्मृति रहनी चाहिए। जितनी जितनी आप स्मृति रखेंगे, अंदर में स्मरण करेंगे, उतना उतना आपको खुशी होगे। कोई कोई क्या करते हैं, हम बाबा का बने ना, फिर हमने ये छोड़ दिया, हमने खान पान छोड़ा, हमने रंगीन कपड़ा पहनना छोड़ा, फलाना छोड़ा, वो सारा समय वो लिस्ट निकालते हैं हमने क्या क्या छोड़ा होता है कचरा, परंतु सारा समय उसकी लिस्ट निकालते रहेंगे। आप वो भूल जाओ, वो तो कुछ भी नहीं छोड़ा हमने, बाबा ने हमारे को क्या दिया वो लिस्ट निकालो। तो आप जब ये लिस्ट निकालेंगे ना, बाबा का बनने के बाद मुझे क्या क्या प्राप्ति हुई, आप खुशी से नाचते रहे। अभी हमारे को कोई पूछता है आपने घर छोड़ा क्या, हम कहते हैं हमने काहे को घर छोड़ा, किसने बोला आपको हमने घर छोड़ा, आपको एक घर है, हमको 6000 घर है, बोलो घर कहाँ छोड़ा हमने, सारे सेवा स्थान तो हमारे घर है, घर कहाँ छोड़ा, परिवार छोड़ा, अरे वो दुखदाई परिवार छोड़ा, ये सुखदाई परिवार हमको कितना बड़ा मिला, किसने बोला हमने परिवार छोड़ा, हमने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। तो हमारे को क्या मिला है वो याद करो ना, तो आपको खुशी होगी। आप जो छोड़ा है ना कचर पट्टी, उसको याद करते इसीलिए दुखी होते, और कुछ नहीं, इसीलिए खुशी नहीं होती, इसीलिए उमंग उत्साह नहीं आता है। तो बाबा से हमें जो जो प्राप्तियां हुई है, उस प्राप्तियों का आप स्मरण करो, उसको याद करो, बाबा को याद करो, तो कभी भी आपका उमंग उत्साह कमती नहीं होगा, आप आगे बढ़ते रहेंगे, उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा आपका।
थैंक यू दीदी। और दूसरा प्रश्न है, बाबा के साथ की अनुभूति होती है, बाबा के साथ की अनुभूति होती है, फिर भी अचानक कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, मन घबरा जाता है, अंदर से घबराहट हो जाती, इसका कुछ निवारण?
बाबा के साथ की अनुभूति होती है और कुछ होता है तो फिर घबरा जाते हैं।
हाँ, थोड़ा अचानक कोई परिस्थिति आ जाती है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं,
फिर ज्ञान का फायदा क्या हुआ। हाँ, फिर साथ का फायदा क्या हुआ। आपको एक बात बताती कहानी, एक भगत था, भगत बच्चा नहीं भगत, वो जो था वो भगवान को बहुत याद करता था पर दुखी रहता था। तो भगवान ने उसको बोला, इस पर से सीखना। भगवान एक बार उसके ऊपर प्रसन्न हो गया, भोलानाथ है ना, प्रसन्न हो जाता है, तो उसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए, कहा बच्चे वर मांग, तेरे को क्या चाहिए। बोला मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ ये चाहिए, ये जो भी सगे संबंधी दोस्त आदि हैं, ये अच्छे दिन होते हैं तो हमको साथ देते हैं, पर जब हमारे पर मुसीबत आती है तो ये किनारा काट लेते, समझा, ये साइड हो जाते, उस समय मेरे कोई सगे नहीं रहते, इसलिए मैं बहुत दुखी होता हूं। तो भगवान आप ये काम करना, आप मेरे को कभी छोड़ना नहीं, मेरे ऊपर कितनी भी मुसीबत आवे तो आप मेरे को छोड़ना नहीं। बोला ठीक है तथास्तु। अभी सब दिन होता ना एक समान, उसका जीवन चल रहा था, बीच में कोई बहुत बड़ी परिस्थिति आ गई। परिस्थिति आ गई तो वो तो दिखाई नहीं पड़ता है, भगवान तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये बेचारा बहुत विवलता में आ गया, उसको याद करने लगा तो प्रकट हुआ। बोला बोलो बेटा क्या है? तो बोला भगवान मेरे को अभी मालूम पड़ा तू भी वैसा ही स्वार्थी है जैसे वो लोग स्वार्थ, वो जैसे दुख के समय पर किनारा कर लेते हैं, आप भी तो ऐसा ही करते हैं। तो बोला अच्छा मैं तेरे को तेरी जीवन यात्रा बताता। तो उसको एक पगड़िया बताए, पगड़िया समझते हो, छोटा रास्ता होता है ना मिट्टी वाला रास्ता, तो उसमें उसको पगड़िया बताया, साक्षात्कार कराया। उसमें वो चल रहा है तो पैरों का निशान पड़ जाता है ना, तो उस पगड़िया के ऊपर उसको चार निशान दिखाई पड़ते हैं, दो भगवान के पैर के और दो खुद के पैर के। और फिर जिस समय उसके ऊपर कठिन समय आता है उस समय सिर्फ दो ही पैर रह जाते। तो ये बहुत जोर से चिल्लाता है, बोला देखो मैंने कहा ना आप भी स्वार्थी है, जब ये मेरे ऊपर कठिन समय आया उस समय आप गायब हो गए, ये सिर्फ मेरे पैर के निशान रह गए, आपके पैर के निशान नहीं रहे। भगवान ने कहा वो तेरे पैर नहीं, वो मेरे पैर है, जब तेरे पर कठिन समय आया तो मैंने तेरे को गोदी में उठा लिया। समझा? बाबा इतना मदद करता है ये कभी भी भूलो मत आप। आपका अगर सच्चा प्यार है तो बाबा आपको गोदी में लेके जाएगा, आप ही क्रॉस कराएगा, आप चिंता मत करो उसकी।
थैंक यू दीदी जी। एक और प्रश्न है, कई बार हमने किसी को दुख दिया, हर्ट किया, और फिर हमने रियलाइज भी किया, उससे माफी भी मांगी,
उसने
मना कर दिया माफ करने के लिए, मैं नहीं माफ करूंगा, तो क्या होगा? हमारे तरफ से क्लियर होगा ये चीज या बची रहेगी?
उसने माफी
या
नहीं
जब किया। तक सामने वाला माफ न कर रहे तब तक ये बोझ बना रहेगा।
आप उसको शुभ भावना शुभ कामना देते रहो, उसके अंदर आप ही वो पहुंचेगी और आपको माफ करता लेगा।
मतलब जब तक माफ करे तब तक शुभ भावना शुभ कामना चलती रहे हमारी।
हाँ, तभी तक देनी पड़ेगी आपको। हट भी तो ऐसा ही किया हुआ होगा ना ज्यादा।
अच्छा, ये मैं समझता हूँ टीचर के तरफ से प्रश्न लग रहा है। आजकल सभी ऑनलाइन क्लासेस आदि करते हैं।
क्या करते हैं?
ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं ना आजकल।
हाँ, बहुत बहुत।
लेकिन अभी तो
नहीं चलते।
तो अभी तो अभी क्लास में आना चाहिए, रेगुलर आना चाहिए। हाँ, और साथ साथ लिखा है कि यज्ञ का महत्व बनाए, यज्ञ सेवा का महत्व बताए।
नहीं, एक बात करो ना।
अच्छा, एक तो पहली बात तो ये ऑनलाइन का सेवा जो है वो तो ठीक है, लेकिन वो अभी रेगुलर भी होना चाहिए ना, क्लास में आना चाहिए।
देखो ऐसा है, अभी ऑनलाइन उस समय जरूरत थी इसीलिए किया था, परंतु अभी देखा जाता है भाई बहनों को आदत हो गई है ना, तो आलस भी घुस गया है। फायदा लिया है बहुत, ऑनलाइन का बहुत फायदा लिया है, परंतु अभी आलस भी घुस गया है, क्योंकि घर में बैठ के सुनते तो कैसे भी हरू भरू तैयार होके नहीं जाना पड़ता है, भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, जल्दी काम नहीं उतारने पड़ते, तो आराम से बैठ करके सुनते हैं। पर ये भी ध्यान में रखो, प्रेजेंट मार्क के भी मार्क्स फाइनल एग्जाम में जमा होते हैं। तो जब हम उस स्थान पर जाते हैं, कहा जाता है कदमों में पद्मों की कमाई है, तो कदम उठा करके जाते हैं तो हमारी कमाई होती है, इसीलिए जाना चाहिए। परंतु हम चारों तरफ देखते हैं, अभी क्लासेस अभी तक ठंडे हैं, अभी गर्म नहीं हुए हैं, हमारे पास बॉम्बे में भी ऐसा ही।
और एक प्रश्न है लास्ट वाला।
आधा क्या था वो?
आइए उसके नहीं, वही नेक्स्ट वाला। यज्ञ का महत्व बताइए। यज्ञ हमारा यज्ञ सेवा दोनों का महत्व
यज्ञ सेवा का, यज्ञ का महत्व तो सबको मालूम है, यज्ञ सेवा का महत्व।
और उसके अंदर ये भी बताइए कि शुद्ध सात्विक भोजन से कैसे शक्तिशाली स्थिति हम बना सकते।
ये घोटाला बहुत करता है। अभी कहाँ शुद्ध भोजन, कहाँ यज्ञ सेवा। देखो
अपने भोजन तो सबको करना होता है ना दीदी, अपन भी जाएंगे।
तो को भूख लगी है क्या? यज्ञ सेवा नहीं करेंगे तो मेवा कैसे मिलेगी आपको? यज्ञ सेवा का तो बहुत बड़ा महत्व है। यज्ञ सेवा करने से तंदुरुस्ती मिलती है। हम इससे पूछो ना, ये यज्ञ सेवा करता है हमेशा, स्थूल सेवा कितना महत्व है उसका। अभी बाबा की परसों मुरली आप लोगों ने सुनी होगी ना, कि भाषण का तो महिमा करते ही है पर बोली को भी जरूर याद करते। ये है यज्ञ सेवा,
बोली दादी को याद।
हाँ, याद करते हैं तो सुभाष को भी याद करेगा, इतना प्यार से करेगा। आगे बोलो।
जो हमारा भोजन का महत्व के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाले, मतलब कि अगर हम भोजन सात्विक करते हैं तो उसकी शक्ति कितनी मिलती है, शक्तिशाली हमारा आत्मा शरीर दोनों भी शक्ति से भरपूर हो जाते।
सात्विक भोजन करेंगे, बाबा की याद वाला भोजन करेंगे, ताकत तो मिलेगी ना आपको। सिर्फ शरीर को थोड़ी ताकत मिलती, आत्मा को भी ताकत मिलती, आत्मा शक्तिशाली बन जाती, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन होता है ना, तो वैसे ही विचार आएगी अंदर में। जैसा भोजन होगा वैसे विचार आएगा, इसीलिए बहुत आवश्यक है सात्विक भोजन, बहुत आवश्यक है। और खास तो बाबा का बनाया हुआ भोजन बहुत आवश्यक। शुरू शुरू में यज्ञ में बाबा मम्मा को बोलते थे सतगुरुवार के दिन, मम्मा सवेरे उठ के बाबा के लिए भोग बनाओ आप अपने हाथों से, योग युक्त होके, आप जितना योग किसी का नहीं, इतना बाबा को महत्व था, समझा। इसीलिए जो भी भोजन पकाने वाले हैं, भले सात्विक भोजन है पर बाबा की याद में रह के भोजन बना, तो उससे खाने वाले का मन भी शुद्ध होता है, पकाने वाले का भी शुद्ध होता है, सबका मन शुद्ध होता है। और आपको मालूम है ना कुंभकर्ण का क्या है? कुंभकर्ण जो 6 मास अज्ञान की निंद्रा में सोया पड़ा था, वो कैसा उठा? उसके कान में से हाथी भेजे, घोड़े भेजे, लश्कर भेजे तो भी नहीं उठा, परंतु जब उसके आगे 36 प्रकार के भोजन बना के रखे तो उठ गया उसकी खुशबू से। वो यहाँ की बात है ना, आप किसी को भी जब प्रसाद देते हो ना, तो प्रसाद खा के उनकी अज्ञान की नींद खुल जाती। तो इसीलिए माताएं खास ये ध्यान रखती हैं, इनको जब भी भोग मिलेगा ना तो ले आती है, कोई प्लास्टिक ले आएगा, डब्बियां ले आएगी, डाल के ले जाएगी, जरा जरा सबको देगी। बड़ा महत्व होता है ना इसका।
बाबा ने शुरू से ही ब्रह्मा भोजन का महत्व बताया है और प्रैक्टिकल में भी ये किया। और सचमुच हम देखते हैं संसार में जितने भी बाबा के बच्चे बनते हैं, जो भी हमारी दीदियां प्रेम प्यार देती है, ब्रह्मा भोजन खिलाते, उसी से बहुत सारे बाबा के बच्चे बन जाते हैं। तो आज भी दीदी को हमने कहा, दीदी आप भाषण तो करने आना, लेकिन राशन भी इधर ही मिलेगा आपको। दीदी पहली बार, नहीं मैं सिर्फ क्लास करूंगी, मैं चली जाऊंगी। नहीं, मैंने कहा पिछले बार हमारा बहुत भोजन बच गया, इस बार बचने ही नहीं देंगे, आपको इधर ही खाना खाना है।
तो मैं कितना खाती होगी देखो। बहुत बच गया इसका भोजन।